पृष्ठ 67। पाश्चात्य नाट्य साहित्य। पाश्चात्य देशों के विचारों का मूल स्रोत यूनान और रोम की गंगा यमुना धाराओं में है। स्वयं यूनान ने मिस्र देश से प्रेरणा ग्रहण की थी। उनके नाटकों का स्थानीय आधार अवश्य था, किंतु जहाँ तक आदर्शों का संबंध था, वे यूनान और रोम से प्रेरणा ग्रहण करते थे। पश्चिमी नाटकों की गतिविधि को समझने के लिए हमको रोम और यूनान के नाटकों का चलता परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है। यूनान में भी अन्य प्राचीन देशों की भांति धर्म की प्रधानता थी। वहाँ के नाटकों का उदय धार्मिक नृत्य और गीतों से भरा हुआ था। ये गीत डायोनिसस की प्रसन्नता वर्षारंभ के समय गाए जाते थे। इस अवसर पर लोगों के हृदय में एक विशेष आतंक और आर्तभाव छाया रहता था। इस समय के गीत अधिकतर गंभीरपूर्ण होते थे। ये गीत डायोनिसस देवता के अनुकरण में बकरी की खाल ओढ़कर गाए जाते थे, क्योंकि उस देवता का धड़ और टांगे बकरी की खाल से थी। अतः इनसे विकसित होने वाले करुणात्मक नाटक ट्रेजेडी कहलाते थे। डायोनिसस का जीवन भी करुणात्मक था। ट्रेजेडी यूनानी ट्रेगास शब्द से, जिसका अर्थ बकरा है, बना है। ये नाटक यद्यपि सब दुखांत नहीं होते थे, तथापि इसमें गंभीर भाव स्थित रखने के लिए करुण और भय के भाव का प्राधान्य रहता था। गंभीर बढ़ाने के लिए ही ये नाटक प्राय दुखांत होने लगे और इनमें घोर भाव भयानक घटनाओं का समावेश होना आरंभ हुआ। मृत्यु से बढ़कर कौन सी चीज गंभीर वर्धक हो सकती है, इसलिए ट्रेजेडी का मृत्यु से संबंध हो गया। जिस अवसर पर ये करुणात्मक गीत नाट्य होते थे, वह यद्यपि 9 वर्ष से संबंध रखता था, तथापि उसमें पिछले 9 वर्ष के गर्व के लिए मृत्यु दंड का भाव लगा रहता था। अरस्तु ने ट्रेजेडी की परिभाषा दी थी, उसमें तो गंभीर का ही भाव था, किंतु पीछे से उसके साथ मृत्यु का संबंध हो गया। यह परिभाषा कुछ अनिश्चित सी है और इसमें भी भरत के सूत्रों की भांति व्याख्या की विविधता को गुंजाइश है। ट्रेजेडी देन इज एन इमोशन ऑफ सम एक्शन दैट इज सीरियस इंटीरियर ऑफ सम मैग्नीट्यूड बाई लैंग्वेज इम्बिलाइज्ड एंड रेंडर्ड प्लेशरेबल बाई डिफरेंट मीन्स इज डिफरेंट पार्ट प्रेजेंटेड नॉट थॉट नरेशन बट इन एक्शन इफेक्टिंग थॉट सिटी एंड टेरर द पर्गेशन ऑफ दीज पैशंस। इस परिभाषा में प्रतीत होता है कि ट्रेजेडी या करुणात्मक नाटक किसी गंभीर पूर्ण और बड़े कार्य के अनुकरण थे। यह अनुकरण विवरण में नहीं वरन कार्य में होता है। यही अंतर महाकाव्य और नाटक का है। महाकाव्य में विवरण रहता है, नाटक में अनुकरण कार्य द्वारा होता है और इसकी भाषा विविध साधनों द्वारा अलंकृत पृष्ठ 68 और प्रसाद पूर्ण बनाई जाती है। इसका फल भय और करुणा को जागृत कर इन भावों का रेचन है। इस परिभाषा का अंतिम अंश ही सबसे संदिग्ध है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि रेचन भी भय और करुणा का ही होता है या और किन्हीं का। यूनान के दुखांत नाटक लेखकों में स्किल्स, सोफोक्लीज, यूरोपीडीज मुख्य हैं। गीत के उदय होने के कारण यूनानी नाटकों में सामूहिक गान की, जिसको कोरस कहते हैं, प्रधानता रहती थी। इसमें बीच में आ जाने से दृश्य विभाजित हो जाते थे। यूनानी दुखांत नाटक प्रायः चेहरे या मुखौटे लगाकर खेले जाते थे। अभिनेता लोग विशाल लगने के लिए ऊंची एड़ी के जूते पहन लेते थे। ये जूते बेस्किन कहलाते थे। यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता के लिए लगाए जाते थे, तथापि ये अभिनय कला के विकास में बाधक रहे। बनावटी चेहरों में उतार चढ़ाव कहाँ। यूनान के नाट्य गृहों के विशाल और खुले होने के कारण इसमें अभिनय कौशल दिखलाना ही कठिन था। यूनानी हास्य नाटक का भी उदय उत्सवों में होने वाले जन मनोरंजन से न हुआ। होली की भांति उन उत्सवों में भी अश्लीलता का प्राधान्य रहता था। पीछे से इसका निराकरण हो गया। ये हास्य नाटक जीवन के कुछ अधिक निकट थे, क्योंकि करुणात्मक नाटकों का संबंध तो अधिकतर देवताओं और नेताओं से ही रहता था। ऐसे नाटकों के विषय में पर्याप्त वैविध्य रहता था। यद्यपि हास्य नाटकों का उदय भी डायनोसिस की ही पूजा से हुआ था, तथापि इनके प्रचार करने वाले वे लोग थे जो कि खेल तमाशे के लिए धार्मिक कृत्यों में शामिल होते थे। ये लोग स्वांग रचाकर अपना मन हल्का कर लेते थे, किंतु इनमें तत्कालीन जीवन की अधिक आलोचना रहती थी और कभी कभी तत्कालीन अधिकारियों की हंसी भी उड़ाई जाती थी। यूनानी हास्य नाटककारों में मिनेंडर ने बड़ी ख्याति पाई है। पश्चिमी सभ्यता यूनान से हटकर रोम पहुंची। यद्यपि रोमन लोग विजेता थे, तथापि ये विजित यूनानियों से पूरी तौर से प्रभावित हुए थे। रोम ने राजनीतिक विजय पाई थी, किंतु सांस्कृतिक विजय यूनान की ही हुई। रोम में यूनानी हास्य नाटकों का अनुकरण हुआ और इनके लिखने में वे लोग अधिक सफल रहे, इनकी संख्या भी अधिक रही। रोम के करुणा प्रधान नाट्यकारों के केवल सिनेका का नाम मिलता है। इसके नाटक श्रव्य अधिक थे, दृश्य कम। रोम में भी अभिनय कला की उन्नति न हो सकी, क्योंकि उनके यहाँ अभिनेता लोग अधिकतर दास होते थे। रोम में नाटकों द्वारा विलासिता और क्रूरता के दृश्यों का प्रचार होने लगा। इसी कारण धार्मिक समाज में उन नाटकों का विरोध हुआ और वहाँ पर नाट्य कला का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। रोमन नाटकों का महत्व इस बात पृष्ठ 69 में है कि उन्होंने यूरोप के नाटकों को प्रभावित किया। मनुष्य की प्रकृति खेल तमाशे चाहती है। जिस धर्म के ने नाटकों का विरोध किया था, उसने नाटकों को दूसरे रूप में अपनाया। यूरोप के प्रारंभिक नाटक रामलीलाओं की तरह अधिकतर धार्मिक होते थे। उनमें ईसा मसीह तथा उनके शिष्यों की जीवन घटनाओं का अभिनय रहता था। ये रहस्य और चमत्कार संबंधी नाटक कहलाते थे। इनके पश्चात नीति प्रधान नाटक आए। ये नाटक प्रायः रूपक और अन्योक्ति प्रधान होते थे। कभी कभी इनमें अपने यहाँ के प्रबोध चंद्रोदय आदि नाटकों की भांति धैर्य करुणा आदि अमूर्त धार्मिक भावनाओं को पात्र बना दिया जाता था। यूरोप में आधुनिक ढंग के नाटकों का उदय पुनरुत्थान काल से हुआ है। उन दिनों प्राचीन आदर्शों की उपासना से होने लगी थी। यूनान और रोम के आदर्श तो वे ही रहे, किंतु विषय में परिवर्तन हो गया। नाटकीय कथा वस्तु में प्रेम का अधिक समावेश होने लगा। इसी को नियो क्लासिक अर्थात अभिनय प्राचीनता वादी युग कहते हैं। इसके पश्चात स्वतंत्र युग आया। इसमें विषय तो प्रेम ही रहा, कथा वस्तु में अभिजात वर्ग की ही प्रधानता रही, किंतु प्राचीन नियमों की अवहेलना होने लगी। यह अवहेलना स्वाभाविक ही थी, क्योंकि नियम परिस्थितियों के अनुकूल बनते हैं। वे नियम बदलती हुई परिस्थिति में केवल नियम होने के कारण उपाय नहीं हो सकते। इस स्वतंत्र युग में सुखांत नाटकों में करुणात्मक तत्वों का समावेश होने लगा था।